एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में।
यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में झांक रहे हैं जो आपको न सिर्फ सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि शायद थोड़ा बेचैन भी कर दे।
हाँ बिल्कुल, किताब है बेन्यामिन लबातुत की व्हेन वी सीज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड।
और लबातुत जो चिली के लेखक है उनकी आवाज समकालीन साहित्य में एकदम ताजा और क्या कहूँ थोड़ी हटके है ना?
बिल्कुल, उनकी खासियत ही यही है कि वो सच और कल्पना को ऐसे गूंथ देते हैं कि आप फर्क नहीं कर पाते। ये किताब विज्ञान, गणित, फलसफा, इतिहास, इन सबके धुंधले चौराहों पर ले जाती है। और ये सिर्फ ज्ञान की खोज नहीं है,
नहीं, ये उस खोज की जो भारी कीमत चुकानी पड़ती है उसकी भी कहानी है,
बिल्कुल
प्रतिभा की नैतिक और मनोवैज्ञानिक कीमत।
सही कहा। और इसे किसी एक खांचे में फिट करना तो नामुमकिन है, उपन्यास कहें, कहानियों का संग्रह या फिर ऐतिहासिक निबंध।
पता नहीं, शायद सब कुछ थोड़ा थोड़ा। कुछ लोग इसे फिक्शन कहते हैं, मतलब तथ्य पर आधारित कल्पना।
हाँ, या फिर स्पेक्युलेटिव बायोग्राफी, मतलब किसी की जीवनी लेकिन अंदाजों और कल्पना के साथ।
ये मूल रूप से स्पेनिश में आई थी 2020 में, अनवेदोर तरीब्ल, जिसका मतलब हुआ एक भयानक हरापन। क्या टाइटल है।
हाँ, और 2021 में जब इसका अंग्रेजी अनुवाद आया तो इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया था।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब की जो थोड़ी उलझी हुई सी बनावट है उसे समझने की कोशिश करें।
हाँ, और जो इसके किरदार हैं, जो असल ऐतिहासिक लोग हैं, उनके अंदर क्या चल रहा था, उनकी यात्रा कैसी थी, उसे महसूस करें।
और सबसे जरूरी, विज्ञान की प्रकृति और हमारी अपनी समझ की हदों पर जो गहरे सवाल ये किताब उठाती है उन पर भी थोड़ी बात करें।
तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपने कहा, ये कोई सीधी सापाठ कहानी नहीं है, ये उन पलों, उन खोजों के बारे में है जिन्होंने 20वीं सदी के विज्ञान और गणित को और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
और ये सफर शुरू होता है एक रंग से। अजीब है ना?
हाँ, प्रशियन ब्लू, एक बहुत ही गहरा सुंदर नीला रंग इत्तेफाक से खोजा गया था।
लेकिन लबातुत यहीं से धागा खींचते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे इस खूबसूरत रंग के पीछे जो रसायन है वो हाइड्रोजन साइनाइड से जुड़ते हैं।
ओहो, वही जहरीला साइनाइड,
हाँ, जो पहले कीटनाशक बना और
फिर उससे बना साइक्लोन बी।
अरे बाप रे, वो गैस जो नाजी कैंपों में इस्तेमाल हुई थी।
बिल्कुल, लाखों लोगों की मौत का कारण। तो देखिए, कहानी की शुरुआत में ही लबातुत ने वो दोहरापन सामने रख दिया है।
हाँ, वैज्ञानिक खोज का वो द्वंद्व,
एक तरफ बनाने की ताकत, दूसरी तरफ मिटाने की।
और ये सवाल कि क्या कुछ जानना ही नहीं चाहिए, क्या कुछ ज्ञान, क्या वो इतना खतरनाक है कि उसे अनदेखा करना ही बेहतर है?
ये ज्ञान का चक्कर वाली बात है जिसे लबातुत कहते हैं। जब आप कुछ ऐसा जान लेते हैं कि आपके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है।
और किताब हमें असल वैज्ञानिकों की दुनिया में ले जाती है। फ्रिट्ज हैबर, कार्ल श्वार्ट्जचाइल्ड, एलेक्जेंडर ग्रोथेंडिक, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, कितने बड़े नाम हैं।
हाँ, और हम उनके जुनून, उनकी आपसी जलन, उनके निजी दुख दर्द, उनके दार्शनिक उलझनों को बहुत करीब से देखते हैं।
और धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होती है कि विज्ञान की बड़ी बड़ी कामयाबियां और उसकी भयानक त्रासदियां वो अक्सर जुड़ी हुई हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू।
चलिए इनमें से कुछ किरदारों की जिंदगी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। फ्रिट्ज हैबर से शुरू करें। क्या कमाल का और दुखद किस्सा है उनका।
फ्रिट्ज हैबर एक जर्मन यहूदी रसायन शास्त्री, वो वैज्ञानिक प्रतिभा के नैतिक पेंचखोखम का एक जीता जागता दुखद प्रतीक है।
उनके अंदर देशभक्ति बहुत थी, जर्मनी के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे।
और उनकी जिंदगी सच में विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ उन्होंने हैबर बॉश प्रक्रिया बनाई।
हाँ, हवा से अमोनिया, जिससे खाद बनी और करोड़ों लोग भुखमरी से बच गए, एक तरह से मसीहा।
लेकिन फिर आया पहला विश्व युद्ध और इसी हैबर ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया जहरीली गैसें बनाने में, क्लोरीन गैस।
रासायनिक युद्ध का जनक कहा गया उन्हें।
हाँ, और वो खुद मोर्चे पर जाते थे ये देखने कि उनकी गैस क्या असर कर रही है।
सोचिए जरा, एक तरफ नोबेल पुरस्कार विजेता, मानवता का उद्धारक, और दूसरी तरफ युद्ध अपराधी।
एक ही जिंदगी में ये दोनों तमगे, और इसकी कीमत उनकी पत्नी क्लारा इमरवाहर ने चुकाई। वो खुद भी रसायन शास्त्री थीं।
हाँ, उन्होंने पति के काम के विरोध में आत्महत्या कर ली थी।
कितनी बड़ी त्रासदी है ये।
और कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू तो इसके बाद आता है। हैबर इतने बड़े देशभक्त, पर नाजियों ने उन्हें यहूदी होने के कारण देश से निकाल दिया।
और विडंबना देखें, उनके ही संस्थान में बनी कीटनाशक तकनीक से जाइक्लोन बी बनी, जिसका इस्तेमाल हॉलोकास्ट में हुआ। शायद उनके अपने रिश्तेदार भी मारे गए। तो हर्बर्ट की कहानी यही दिखाती है कि ज्ञान जो जीवन दे सकता है, वही भयंकर विनाश भी ला सकता है। वो कहते थे, युद्ध में वैज्ञानिक देश का होता है, शांति में दुनिया का। पर क्या ये इतना आसान है?
शायद नहीं। उनकी कहानी विज्ञान के नैतिक दलदल को दिखाती है। अब कार्ल श्वास चाइल्ड की बात करें, वो हमें ज्ञान की एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, शायद ज्यादा शुद्ध पर उतनी ही खतरनाक।
हाँ, कार्ल श्वार्ट्ज चाइल्ड, जर्मन खगोलशास्त्री और भौतिक विज्ञानी। उनकी कहानी है मौत के साये में ज्ञान की शुद्ध जुनूनी खोज।
पहले विश्व युद्ध के मोर्चे पर एक लाइलाज बीमारी से जूझते हुए उनका एक ही जुनून था, आइंस्टीन की नई नई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुश्किल समीकरणों को हल करना।
उनकी प्रेरणा पूरी तरह बौद्धिक थी, गणित की सुंदरता, एक सटीक हल की तलाश।
और जंग के माहौल में मौत के इंतजार के बीच उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन सा लगता था, आइंस्टीन के समीकरणों का पहला सटीक हल खोजा।
लेकिन इस हल ने एक ऐसी चीज की भविष्यवाणी की जिसने भौतिकी की दुनिया हिला दी, एक सिंगुलैरिटी।
सिंगुलैरिटी मतलब अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु, जहां स्पेस टाइम मुड़ जाता है, जहां भौतिकी के सारे नियम बेकार हो जाते हैं।
ये ख्याल इतना अजीब था, इतना ज्यादा हमारी सहज समझ के खिलाफ कि खुद आइंस्टाइन ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया।
हाँ, लेकिन यही ब्लैक होल का पहला गणितीय संकेत था। श्वार्ट्जचाइल्ड ने जैसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे डरावने राज की झलक देख ली और उसके फौरन बाद मर गए।
ये उस सीमा का प्रतीक है जहां हमारी समझ जवाब दे जाती है।
वाकई हेबर और श्वार्ट्जचाइल्ड के बाद किताब हमें गणित की दुनिया में ले जाती है, अलेक्जेंडर ग्रोथेंडिक के जरिए।
20वीं सदी के महानतम गणितज्ञों में से एक, पर थोड़े रहस्यमयी, आदर्शवादी। उनका बचपन बहुत मुश्किल था, पिता को ऑशविट्स में मार दिया गया था।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गणित को दे दी, एक तरह का आध्यात्मिक जुनून था उनमें। वो गणित के सबसे बुनियादी, सबसे गहरे ढांचों को समझना चाहते थे।
बीजगणितीय ज्यामिति यानी एल्जेब्रिक ज्योमेट्री जैसे मुश्किल क्षेत्रों में क्रांति ला दी उन्होंने। उनकी प्रेरणा थी गणित की शुद्धता में उनका विश्वास।
लेकिन फिर एक दिन उन्हें पता चला कि जिस संस्थान में वो काम करते हैं उसे सेना से पैसा मिलता है।
ओहो,
और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था।
हाँ बिल्कुल, ये सोचना कि उनका पवित्र सुंदर गणित युद्ध और विनाश के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये उनके आदर्शों के बिल्कुल खिलाफ था। उनकी दुनिया ही टूट गई।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने अकादमिक दुनिया, गणित का समुदाय सब छोड़ दिया, अपना पद त्याग दिया।
और कहाँ चले गए?
फ्रांस के एक दूरदराज गांव में जाकर गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। अपना बाकी जीवन पर्यावरण और अध्यात्म में लगा दिया।
तो ये एक तरह से सचेत फैसला था, गणित के जरिए दुनिया को समझने की कोशिश बंद करने का फैसला, हैबर के बिल्कुल उलट।
हाँ, क्योंकि वो अपनी रचनाओं के संभावित गलत इस्तेमाल का नैतिक बोझ नहीं उठाना चाहते थे। अब आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में। यहाँ तो समझ का संकट और भी गहरा है, और दो मुख्य किरदार हैं वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर।
दोनों एक ही पहेली सुलझाने में लगे थे, परमाणु के अंदर की वो अजीबोगरीब दुनिया, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग।
हाइजेनबर्ग का रास्ता था कट्टरपंथी स्वीकृति का, उस अजीब दुनिया को वैसे ही स्वीकार कर लो जैसी वो है।
हाँ, हेलिगोलैंड द्वीप पर बीमारी और अकेलेपन में, एक बहुत इंटेंस मानसिक अवस्था में उन्होंने मैट्रिक्स मैकेनिक्स बनाए, गणित की एक नई अजीब भाषा।
और फिर आया उनका सबसे मशहूर सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल,
जो कहता है कि आप एक ही वक्त पर किसी कण की सही जगह और सही रफ्तार दोनों एक साथ जान ही नहीं सकते। एक को जानोगे तो दूसरा हाथ से निकल जाएगा।
हाइजेनबर्ग ने इस चौंकाने वाले विचार को अपना लिया कि हकीकत अपने सबसे निचले स्तर पर तयशुदा नहीं है, संभावनाओं पर आधारित है और हमेशा थोड़ी हमारी पकड़ से बाहर रहेगी।
दूसरी तरफ थे इरविन श्रोडिंगर। उन्हें हाइजेनबर्ग का गणित बदसूरत लगता था, अटपटा।
हाँ, वो एक ज्यादा सुरुचिपूर्ण, ज्यादा सहज लगने वाला जवाब चाहते थे, तरंगों पर आधारित।
और एक सेनेटोरियम में अपनी प्रेमिका के साथ रहते हुए रचनात्मकता के एक जबरदस्त झोंके में उन्होंने अपना मशहूर वेव इक्वेशन बना डाला, क्वांटम दुनिया को समझने का एक और तरीका।
लेकिन श्रोडिंगर खुद भी क्वांटम थ्योरी के दार्शनिक नतीजों से बहुत परेशान थे। खासकर उस कोपेनहेगन व्याख्या से।
हाँ, कि कोई चीज तब तक मौजूद नहीं होती जब तक उसे देखा ना जाए, उन्हें ये बात बेतुकी लगती थी।
और इसी बेतुकेपन को दिखाने के लिए उन्होंने वो मशहूर विचार प्रयोग रचा, श्रोडिंगर की बिल्ली।
हाँ, एक बिल्ली जो बंद बक्से में जहर के साथ है, और जब तक बक्सा खोलो नहीं तब तक वो एक ही समय में जिंदा भी है और मुर्दा भी है। क्या अजीब चीज है।
तो ये दोनों, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर, क्वांटम मैकेनिक्स के जन्म से जुड़े उस गहरे मानसिक और दार्शनिक बिखराव को दिखाते हैं, वो पल जब लगा कि इंसानी समझ ही टूट गई है।
इसका चरम था 1927 का सोलवे सम्मेलन, जहां दुनिया के सबसे बड़े दिमाग इकट्ठा हुए, आइंस्टाइन, बोर, प्लांक, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर।
और वहां नील्स बोर, जो नई संभावनाओं वाली हकीकत के पैरोकार थे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका मानना था भगवान पासे नहीं फेंकता, के बीच जबरदस्त बहस हुई।
हाँ, जैसा किताब में कहा गया है, गणित ही हकीकत के ताने बाने को बयान करने वाली अकेली जुबान थी, मगर ये जुबान इंसानी दिमाग के लिए नहीं बनी थी। यही तो है वो ज्ञान का चक्कर।
इन किरदारों और कहानियों को लाबातुत ने एक खास तरह से बुना है। किताब की बनावट सीधी नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं, ये लीनियर नहीं है, ये विषय आधारित है, साहचर्यपूर्ण है। जैसे एक विचार से दूसरा निकलता है, एक कहानी की गूंज अगली में सुनाई देती है।
हाँ, जैसे कोई चेन रिएक्शन, और धीरे धीरे कहानियां और पेचीदा होती जाती हैं।
पहला खंड है प्रशियन ब्लू, ये प्रस्तावना जैसा है, सृजन और विनाश दोनों के बीज यही हैं, रंग से साइनाइड, हैबर का दोहरा जीवन, क्लारा की मौत और जाइक्लोन बी।
फिर श्वार्ट्जचाइल्ड सिंगुलैरिटी, यहाँ खौफ भौतिक से सैद्धांतिक बन जाता है, सिंगुलैरिटी की खोज, विस्मय से भय तक का सफर।
तीसरा खंड द हार्ट ऑफ द हार्ट, क्रोथेंडिक के जरिए गणित की अमूर्त दुनिया, शुद्धता की तलाश, मोहभंग और दुनिया से किनारा।
चौथा खंड, जिसका नाम ही किताब का नाम है, व्हेन वी सीज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ये कहानी का चरम है। क्वांटम मैकेनिक्स, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, सोलवे सम्मेलन, बोर बनाम आइंस्टीन, यहां ज्ञान का चक्कर सबसे ज्यादा महसूस होता है।
और अंत में द नाइट गार्डनर, ये एक उपसहार जैसा है, कथावाचक शायद खुद लावातूत इन सब पर सोचते हैं। रात के माली का जिक्र है, जो बगीचे के छिपे रिश्तों और जहर के बारे में जानता है, ज्ञान के खतरे का एक छोटा सा रूपक। यहां आकर टोन शांत हो जाता है।
इस पूरी बुनावट से कई गहरे विषय उभरते हैं, सबसे मुख्य तो वही है, प्रतिभा और ज्ञान का वो दोहरा चरित्र।
हाँ, सृजन बनाम विनाश, हैबर की कहानी प्रशियन ब्लू से जाइक्लोन बी तक इसे साफ दिखाती है, ज्ञान में ही अच्छाई और बुराई दोनों की संभावना है।
दूसरा बड़ा थीम है इंसानी समझ की सीमाएं, जैसा कि टाइटल ही कहता है।
बिल्कुल,
क्वांटम मैकेनिक्स हो या सिंगुलैरिटी, ये सब उस जगह इशारा करते हैं जहां हमारा तर्क, हमारी सहज बुद्धि जवाब दे जाती है।
वो बौद्धिक चक्कर पैदा करता है। किताब में एक लाइन है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार देख लो तो अनदेखा नहीं कर सकते,
और कुछ ख्याल ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सोच लो तो भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, बहुत गहरी बात है।
और तीसरा अहम सवाल है वैज्ञानिक की नैतिक जिम्मेदारी का।
हाँ, हैबर बनाम ग्रोथेंडिक, एक ने देशभक्ति का हवाला दिया, दूसरे ने सिर्फ संभावना से ही रास्ता बदल लिया।
परमाणु बम का खतरा भी पृष्ठभूमि में मंडराता रहता है।
ये नैतिक दुविधाएं पाठक को भी परेशान करती हैं।
क्या वाकई जैसा किताब कहती है, विज्ञान के सबसे खूबसूरत सिद्धांत अक्सर इंसानी मामलों पर लागू होने पर सबसे विनाशकारी होते हैं। सोचने वाली बात है।
हाँ, और भी पढ़ते हैं, जैसे वो पागलपन और प्रतिभा के बीच का रिश्ता।
हाँ, कैसे महान खोजें अक्सर दिमागी उथल पुथल में होती हैं, और इस प्रतिभा की कीमत क्या है,
और हकीकत की भयानक या विस्मयकारी प्रकृति। न्यूटन का सरल ब्रह्मांड पीछे छूट गया, अब क्वांटम और सापेक्षता का ब्रह्मांड है, जो अजीब है, अप्रत्याशित है, शायद डरावना भी है।
वो भयानक हरापन वाला टाइटल शायद इसी तरफ इशारा करता है।
और ये विरोधाभास भी है कि जितना ज्यादा जानते हैं उतना ही एहसास होता है कि कितना कम समझते हैं।
अनिश्चितता का सिद्धांत, बिल्कुल।
और प्रतिभा का अकेलापन।
हाँ, असाधारण दिमाग अक्सर अकेले रह जाते हैं, ज्ञान की एक कीमत चुकानी पड़ती है। और खूबसूरती और खौफ का रिश्ता, प्रशियन ब्लू सुंदर है पर इतिहास भयानक, परमाणु भौतिकी आकर्षक है पर नतीजे दहला देने वाले।
और अंत में ये एहसास कि कुछ रहस्य हमेशा बने रहेंगे, शायद हमें अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखना होगा।
लाबातूत का लिखने का अंदाज भी तो बहुत खास है, वो तथ्यों से शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे कल्पना में चले जाते हैं।
हाँ, वो सच और कल्पना की रेखा धुंधली हो जाती है।
ये फैक्शन तकनीक कमाल की है और कहानी कहने का नजरिया भी बदलता रहता है, कभी बाहर से, कभी किरदारों के मन के अंदर से।
भाषा भी जैसे जैसे विषय गहरे होते हैं, ज्यादा अमूर्त, ज्यादा सांकेतिक होती जाती है।
और साहित्यिक युक्तियां भी जबरदस्त हैं, तथ्य और कल्पना का मिश्रण। फिर वो बिंब, क्लोरीन गैस का हल्का हरा बादल, सिंगुलैरिटी का काला सूरज, बीमारी का चित्रण,
पूर्वाभास का इस्तेमाल, हॉलोकॉस्ट, परमाणु बम का खतरा, रूपक और प्रतीक, गणित को दिल का दिल कहना, क्वांटम को दुस्वप्न, ये सब पाठक पर गहरा असर डालते हैं।
यकीनन, इस किताब को पढ़कर एक अजीब सा मिलाजुला भाव उठता है। इंसान की प्रतिभा पर हैरत भी होती है और उसके नतीजों पर सिहरन भी।
एक तरह का वजूद का चक्कर महसूस होता है कि जिस तरक्की पर हम इतराते हैं उसकी नींव कितनी नाजुक है।
और उन वैज्ञानिकों का अकेलापन भी छू जाता है।
ये किताब प्रगति के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है। क्या हर खोज अच्छी होती है? क्या कुछ ज्ञान वाकई खतरनाक है?
हाँ, ये हमें विनम्र बनाती है, इंसानी दिमाग की ताकत और उसकी सीमाओं दोनों के सामने। एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं।
और ये नैतिक चेतना जगाती है कि कैसे अमूर्त लगने वाले बौद्धिक काम के भी दुनिया पर गंभीर असर हो सकते हैं। वो लाइन याद है, हमने अपनी इंद्रियों की पहुंच बढ़ाने के लिए मशीनें तो बना ली,
लेकिन इस प्रक्रिया में कहीं हमने अपनी इंसानियत से ही नाता तो नहीं तोड़ लिया?
हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है।
तो अंत में ये किताब हमें सिखाती क्या है? आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है?
शायद ये हमें लगातार याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज जितनी ताकतवर है उतनी ही जिम्मेदारी की मांग करती है। इसके नतीजे अप्रत्याशित, खतरनाक हो सकते हैं।
हाँ, ये विनम्रता और सावधानी बरतने को कहती है, और ये सवाल पूछती है, क्या कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है?
आज के AI और जेनेटिक इंजीनियरिंग के युग में ये सवाल और भी जरूरी हो गया है ना?
बिल्कुल, ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।